संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र का ये द्वितीय भाग है। हरी सो जगवस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री राधे राधे। सीताराम राधेश। तो रामानुजाचार्य जी यादव प्रकाश जी की पाठशाला में वेदाध्ययन करने लगे। एक दिन वेदाध्ययन करते करते वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे गुरुजी की। तो वहाँ पे एक उनके शिष्य आए और वो आकर उन्होंने एक उनको श्लोक पढ़ा और उसका वो अर्थ पूछने लगे। एक शब्द था कप्यासम, उसका इन्होंने जो अर्थ किया और उस श्लोक में भगवान की उपमा दी जा रही थी, भगवान के मुख की उपमा कर रहे थे वो। तो जो भगवान के मुख की उपमा करी वो कपि नितंब से की उन्होंने। कप्यासम शब्द का अर्थ यादव प्रकाश जी ने कर दिया कपि नितंब, क्योंकि लाल लाल होते हैं कपि नितंब। तो बोले वो भगवान के, तो उन्होंने तो बोल दिया। तो इधर इनके चरण दबाते दबाते इनकी अश्रुधार बहना शुरू हो गई, आंखों से आंसू जब टप टप उनके पैरों पे पड़े। तो वो बोलने लगे, अरे तुम रो क्यों रहे हो? इन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है। कि क्या हुआ? कि आपने भगवान के इतनी सुंदर मुख का वर्णन किससे कर रहे हैं? तो अरे बोले तो वो लिखा है उसका अर्थ। बोला नहीं, उसका ये अर्थ नहीं हो सकता, तो तुम बताओ क्या अर्थ है। इन्होंने अर्थ बताया कि जैसे सूर्य की प्रकाश में, जब सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है और वो जब एक लाल कमल पर पड़ता है तो उसकी जो दिव्य कमल की समाल, तो कमला अरविंद, भगवान के मुख का वर्णन उन्होंने अरविंद से मतलब कमल से किया, तो लाल कमल से। तो ये झेप गए कि वो सत्य भी था। भगवान का कोई कपि नितंब से वर्णन करेंगे, वो उपमा देंगे आप? इन्होंने कमल से, लाल कमल से भगवान की उपमा दी। फिर दूसरी घटना एक और घटी कि एक और एक वैष्णव आए एक दिन, उन्होंने भी कुछ पूछा। तो इन्होंने अद्वैत सिद्धांत से उसको वो बताया यादव प्रकाश जी ने, और इन्होंने भक्ति मार्ग का समर्थन करके वही चीज़ उनको बता दी। एक वैष्णव थे वो, तो उनके गुरुजी को, यादव प्रकाश जी को लगा कि ये तो मेरा खंडन कर रहा है और आगे चल के ये बार बार ऐसे ही खंडन करता रहेगा और मेरे सिद्धांत को की तो ये धज्जियाँ उड़ा देगा, मतलब मैं ही नाक को पाल रहा हूँ अपने यहाँ। तो उसके मन में आई कि इसे जितना जल्दी हो उखाड़ के फेंकना चाहिए, काटना चाहिए इसको, तो नहीं तो ये शूल ऐसा होगा, ये मुझे ही चुभेगा, मेरा ही खंडन करेगा ये बार बार जहाँ पे भी होगा। और क्योंकि इसके जो ये खंडन करता भी है वो अकाट्य होते हैं, तर्क इतने इसके मतलब ज़बरदस्त होते हैं कि वो मुझसे भी नहीं कटते हैं, तो ये वास्तव में ही मतलब मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसके मन में ऐसा आया, द्वेष आ गया है शिष्य के प्रति। उसने अपने और शिष्यों के साथ मिल करके एक प्लान बनाया, षड्यंत्र रचा कि चलो हम तीर्थ यात्रा पे चलते हैं और गंगा जी दर्शन करके आएंगे, और गंगा जी स्नान करके आएंगे और दर्शन करेंगे तीर्थों के। इनको भी राज़ी कर लिया, तो रामानुजाचार्य जी भी तैयार हो गए, जंगल में चल पड़े। बहुत सारे शिष्यों के साथ में चलते रहे। उनका यही षड्यंत्र था कि जंगल के बीच में जहाँ पहुँचेंगे वहाँ इनको पकड़ के मार देंगे, ख़त्म कर देंगे इनको। तो ये बात पता चल गई इनके एक मौसी के लड़के थे गोविंद नाम के, वो भी उनके शिष्य थे। गोविंद को भी ये बात भनक लग गई उन शिष्यों में से कि ऐसे ऐसे करके प्लान है इनको मारने का। उसने जंगल में ही रामानुजाचार्य को बता दिया कि आप यहाँ से भाग जाओ और जितना जल्दी हो आप पीछे हट के यहाँ से कहीं से जैसे भी करके छिप के निकल जाओ, नहीं तो ये षड्यंत्र है आपके मारने का। तो उन्हें बोला ठीक है। तो रामानुजाचार्य जी जंगल में बहुत दूर निकल आए थे, सैकड़ों मील की यात्रा तब हो चुकी थी, इतनी दूर घोर जंगल में थे। वहाँ से वो जैसे तैसे मतलब वहाँ से निकले, वो निकल के बहुत थक गए, ना उनके पास जल की सुविधा थी कहीं पे पीने के लिए, ना खाना था कुछ। तो हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो भगवान का नाम लेते लेते लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण का नाम, वो लक्ष्मीनारायण को अपना इष्ट मानते, लक्ष्मीनारायण का नाम जपते जपते जंगल में एक जगह आके वो मूर्छित हो गए, बेहोशी की हालत थी, पेड़ के नीचे लेटे। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण ही एक स्त्री पुरुष का रूप धर के आए आए और वो उन्होंने बताया कि भाई किधर कहाँ जा रहे हो तुम। उन्होंने बताया कि हम तो भटक गए हैं रास्ता, हमें तो कुछ पता नहीं है, हिम्मत शरीर में है नहीं चलने की। तो वो कहने लगे कि हमें रास्ता पता है, हम तो आते जाते हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो वहीं जंगल के फल फ्रूट्स उन्होंने खिलाए, खा के चले कि जल पीना है। तो आगे जाके एक सरोवर के पास में बहुत जल्दी वो पहुंच गए और वहां से उन्होंने जल, वो कहने लगे कि हमें भी जल पिला दो। भगवान ने ऐसी घटना करी कि माँ लक्ष्मी ने भी और भगवान नारायण ने भी यम रामानुजाचार्य के हाथ से अंजलि में जो जलाया वही पिया। तो इन्होंने जल पिलाया उनको, दोनों को जल पिला के, जैसे ये जल पिला के पलटे वो देखा वो दोनों गायब, और ये समझ गए कि ये तो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुझे तो ये कृतार्थ हुए, वो भगवान लक्ष्मी नारायण मुझे दर्शन दे के गए। ये वहाँ से जैसे बाहर निकले तो इनका घर आ गया। मतलब जो इन्होंने महीनों की यात्रा करी थी वो इनकी एक दिन में यात्रा ख़त्म हो गई। ये समझ गए लक्ष्मी नारायण के चमत्कार से हमारी यात्रा, ऐसे ये घर आए, घर ये बड़े प्रसन्न हुए, अपनी माँ को सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन हुए। वो भी बताया कि उन्होंने यादव प्रकाश ने हमारे साथ क्या किया, पर हमें एक दिन में भगवान ने ऐसी कृपा की यहाँ पहुँचा दिया जो महीनों यात्रा करके वहाँ तक पहुँचे थे। तो माता भी बड़ी प्रसन्न हुई। अब उधर जंगल में इनको ढूंढने लगे कि कहाँ है, ढूंढने तो बहुत ढूंढने के बाद भी ये कहीं नहीं मिले, पता चल गया। अच्छा, ये किसी ने नहीं पता चला कि गोविंद ने उनको बता दिया था। उन्हें लगा कि उनको तो कोई यहाँ पे जंगली जो पशु है, हिंसक पशु, वो खा गया है, शेर वेर चीते वीते ने खा लिया होगा, इसलिए उनका काम तमाम हो गया, हमें मारना भी नहीं पड़ा। वो बड़े खुश हुए। जैसे ही वो गंगा जी में पहुँचे, पहुँचने से पहले ही उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई यादव प्रकाश जी की, ना तो वो गंगा स्नान कर पाए, ना वो तीर्थ यात्रा कर पाए, उनकी तबीयत वहाँ पर बहुत ख़राब रही, पूरा स्वास्थ्य उनका ख़राब हो गया, पूरे उनके जो शिष्य उसमें थे उनको भी सही से उसका लाभ नहीं हुआ। गोविंद को ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उनके इष्ट भगवान शिव थे, तो उनको पिंडी भगवान शिव की, गंगा जी में पिंडी मिली और उन्होंने पिंडी को अपनी गोद में बड़े अच्छे से, मतलब बाहों में भरा पिंडी को, और इन्होंने भगवान शिव की अनुभूति हुई गोविंद जी को। ये वहाँ से दर्शन करके फिर वापस आए। इधर वापस आए तो जब यादव प्रकाश जी को पता चला कि वो तो जीवित है, उन्हें ये था कि मेरे षड्यंत्र का तो पता ही नहीं है इनको, वो लज्जित भी हुए, पर उन्हें ये पता चला बाद में कि इनको तो वो ऐसे भी ऐसे व्यवहार कर रहे थे रामानुजाचार्य जैसे उनको किसी को कुछ पता नहीं है। पहले तो मन में उनके संकोच था, लज्जा थी, पर जब पता चला कि अरे इनको तो पता ही नहीं है कुछ, वो कहने लगे तुम आते नहीं हो आजकल पढ़ने के लिए, पाठशाला आओ आया करो। इन्होंने फिर जाना शुरू कर दिया कि ठीक है चलो गुरु हैं जो भी हैं, फिर ये जाना शुरू किया इन्होंने। तो ये जाने लगे जब पाठशाला में, एक दिन क्या हुआ कि एक राजा की एक पुत्री थी राजकुमारी, उसको कोई ब्रह्म राक्षस लगा हुआ था। तो वो उन्होंने यादव प्रकाश जी, क्योंकि वेद के विद्वान हैं और बहुत सारे शिष्यगण हैं, सबको इन्होंने बुलाया और यादव प्रकाश जी से कहा कि इसको ब्रह्म राक्षस लगा है, आप वेद मंत्रों से या जैसे भी भाई इनके ब्रह्म राक्षस उतार दे। बोला हाँ उतार देंगे हम, चलो लेके। तो ये जैसे ही राजकुमारी के सामने गए तो राजकुमारी ने जो ब्रह्म राक्षस लगा हुआ था उसने इसको फटकारा, बोला तू मुझे भगा सकता है, निकल तू यहाँ से बाहर, तुझे पता है तू कौन है, तू पिछले जन्म में एक विष खोपड़ा था, तुझे तो भगवान की किसी संत महात्मा की शीत प्रसादी मिल गई थी, एक झूठी पत्तल जो एक महात्मा ने खा के फेंक दिया था उसमें तेरा मुंह लग गया था, उसकी वजह से तो तुझे ये शरीर मिला है, और तू मुझे क्या उतारेगा, तू अगर सही में मुझे भगाना चाहता है ना तो तेरा शिष्य है रामानुजाचार्य उसका चरणामृत मुझे पिला दे, मेरे सर पर उसका पैर रखवा दे, मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं छोड़ के चला जाऊँगा। ये बात जब वहाँ सुनी राजा ने और लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा भाई कौन है रामानुजाचार्य, कौन है रामानुज, तो उन्होंने बताया कि ये हैं। तो उनको कहा अच्छा दो चरणामृत दो, तो राजा की आज्ञा थी तो इन्होंने चरणामृत भी दिया और इनका पैर उसके उस पर राजकुमारी के सर पे जैसे ही रखा गया तो वो ये बताते हैं कि उसका उद्धार हो गया और राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ये घटना देख करके यादव प्रकाश जी को और जलन हो गई कि ये तो भाई बहुत, मतलब जहाँ भी जाते हैं मेरा ही ये बुरा कर रहे हैं, भला तो कुछ कर नहीं सकते, तो इनको साथ में रखना ठीक नहीं है। इनको उन्होंने हाथ जोड़े कि आप ऐसा करो अपना रास्ता देख लो, दोबारा हमारी पाठशाला में आने की आपको आवश्यकता है नहीं, जहाँ जाना है जाओ आप, हमारे पास नहीं आना। ये बेचारे घर आए और इन्हें लगा कि हम आए थे जिस काम के लिए, कांचीपूर्ण स्वामी जी के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, वो तो हमने किया ही नहीं है। तो ये सीधे मिले कांचीपूर्ण कांचीपुरी स्वामी जी से। तो कांचीपुरी स्वामी जी ने भी इन्हें हृदय से लगाया और इनके बारे में उन्होंने सुन रखा था। और इनको कहा कि जिस सरोवर में लक्ष्मीनारायण जी को उन्होंने जल पिलाया था कि उसी सरोवर का जल आप वरदराज भगवान को, जो हाँ वरदराज कांचीपुरी जी के इष्ट थे जिनकी वो मंदिर में सेवा करते थे वरदराज भगवान की, कि इनको नित्य वो जल ला के पिलाया करो और उन्हीं की उनसे सेवा किया करो जल से। तो ये नित्य जल की सेवा करने लग गए और वहीं पे वरदराज भगवान के यहाँ पे ये नित्य सेवा में उपस्थित रहते थे। सत्संग वार्ता होती थी और वेदों का और भक्ति का वहाँ पे प्रचार प्रसार जो भी वहाँ जितने भी लोग आते थे किया जाता था। अभी रंग भगवान के यहाँ पे यमुना चार्य जी रहते थे जो रंग भगवान के पुजारी भी थे और बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे और उन्होंने बहुत सारे जीवों का उद्धार किया था। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वो चाह रहे थे कि रंग भगवान की सेवा किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथ में जानी चाहिए जो ऐसा योग्य हो कि अच्छे से संभाल भी ले और जो जगत का कल्याण करने वाला हो। तो सारी शिष्य मंडली को उन्होंने बिठाया और उनसे पूछा कि अभी धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है। सबने एक मत होकर कहा कि अभी रामानुजाचार्य ही इस योग्य हैं कि जो रंग भगवान की सेवा है इनको संभाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको हमारा निमंत्रण दो कि वो यहाँ रंग भगवान के यहाँ आए। बोले जी ठीक है हम जाते हैं। फिर शिष्यगण ये समाचार लेकर के, यमुनापुरी जी का सारा समाचार लेकर के कांचीपुरी स्वामी जी के यहाँ पे आए और ये समाचार सुन के रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो यमुनाचार्य जी को अपना गुरु बनाना चाह रहे थे कि मैं उनसे ही दीक्षा लूँगा। अभी तक इन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली थी क्योंकि उनसे ही उन्हें ही गुरु बनाऊंगा और ये भाव विभोर हो गए और ये तुरंत ही महापूर्ण जी को लेकर के वहाँ से निकल पड़े। और ये निकल पड़े जैसे ही इन्हें लगा कि हम पास में आए हैं, इनको ऐसा भावावेश आया कि ये बेहोश हो गए भाव में कि अभी मिलन होगा, अभी यमुनाचार्य जी से मिलन होगा मेरा। और ऐसा ऐसा भाव आया जंगल में, ये बेहोश हो गए, वहाँ बेहोश हो गए। महापूर्ण जी थे तो उन्होंने जैसे तैसे इनको जगाया। यहाँ पर विराम देते हैं और आगे हम बताएंगे किस तरीके से इनका क्या यमुनाचार्य जी से मिलन होता है और उसके बाद में फिर कैसे कैसे ये रंगनाथ जी की सेवा में आते हैं, क्या क्या होता है, ये आगे की कथा अगले भाग में करते हैं। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।